आप सबको नमस्ते। आज हम जो हिंदू धर्म के जो शास्त्रों का जो सीरीज है उसका ऑलमोस्ट ये लास्ट पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे स्मृति शास्त्र, फिर इतिहास शास्त्र। ये इतिहास हिस्ट्री नहीं, ये भी एक तरह के हिंदू धर्म ग्रंथ, और पुराण। ये तीन तरह के लिटरेचर के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम आएंगे धर्मशास्त्र पर। धर्मशास्त्र शब्द से जैसे आपने जाना, जो धर्म को एक्सप्लेन करता है, धर्म क्या है और धर्म क्या है इसका एक्सप्लेनेशन तो आपको हर शास्त्र में मिलता है। वेद में, उपनिषद में, जितने भी दर्शन शास्त्रों में, सब जगह धर्म का क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन मिलता है। धर्मशास्त्र का काम क्या है कि जब डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने की बात आए, वो धर्म कैसे लाइफ में इंप्लीमेंट करना है उसके ये शास्त्र हैं। डे टू डे लाइफ में आपका, हमारा जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, व्यवहार है, उसमें धर्म कैसे हम इसको इंक्लूड करें, क्योंकि हम अपने अपने जीवन में अलग अलग तरह के रोल निभाते हैं। हम सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ, किसी बच्चे का माँ बाप, किसी के बच्चा तो है नहीं। कोई किसान है, कोई राजा है, कोई पुलिस ऑफिसर है, ये भी रोल लाइफ में होता है। फिर आपके तो समाज के साथ रिलेशनशिप है, वहां हर जगह धर्म एक जैसा निभाना मुश्किल है। तो उसकी जो डे टू डे लाइफ में उसको कैसे प्रैक्टिस करें, ये चीजें धर्मशास्त्रों का विषय होता है। नंबर टू, क्योंकि जो भी ह्यूमन बींग का, मनुष्य का अपने परिवार से जो रिलेशनशिप है, फिर जो सोशियल रिलेशनशिप है, फिर ऊपर जाएंगे नेशनल है, तो इन सब चीजों के साथ, क्योंकि ह्यूमन बींग कनेक्टेड है, मनुष्य जुड़ा हुआ है, तो उसका व्यवहार हर जगह इम्पैक्ट डालता है। तो इस नाते इस धर्मशास्त्र का ये भी विषय है कि जो लॉज हैं, जो सोशियल फैमिली इंडिविजुअल जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन सब चीजों का भी टॉपिक, इन सब चीजें, ये सब टॉपिक भी धर्मशास्त्र के विषय होते हैं। बेसिकली हम अगर धर्मशास्त्र के जो टॉपिक्स हैं इसको तीन तरह से डिवाइड करते हैं। पहला है आचार पाठ। आचार मतलब आपकी जो कंडक्ट है, व्यवहार है, तो अच्छा व्यवहार क्या है, बुरा व्यवहार क्या है, इन जनरल और स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा व्यवहार गलत है। तो ये जो बारीकी से धर्म के जीवन में आचरण करने का जो जो मनुष्य को प्रॉब्लम होता है, उन सब का डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन आपको धर्मशास्त्र में देता है। फिर हमारे जो वर्ण और आश्रम के बेसिस पर, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, प्रोफेशनली मेरे काम अलग हो जाते हैं, मैं राजा हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं किसान हूं, मैं कुम्हार हूं, तो मेरी क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या राइट्स मेरे पास है और क्या ड्यूटीज मेरे पास है। फिर सेकेंड आता है आचार में, आपके अच्छे या बुरे व्यवहार क्या है, गुड कंडक्ट क्या है, बैड कंडक्ट क्या है, गुड और बैड कंडक्ट इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट क्या है। आज पेरेंट्स मेरे क्या अच्छे कंडक्ट होना चाहिए, आज बच्चों के नाते मेरे क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार हैं। ध्यान रखिए, धर्मशास्त्र केवल ड्यूटीज की बात नहीं करता है, योर राइट्स ऑल्सो, आपकी क्या क्या राइट्स हैं ये भी धर्मशास्त्र डिसाइड करता है, और जो वैल्यूज है, एथिक्स है, इसका भी एक्सप्लेनेशन मनुस्मृति देता है। सेकेंड जो टॉपिक है धर्मशास्त्र का, एक मिनट, वो है व्यवहार। वो हिंदी में व्यवहार का मतलब तो सिंपल होता है, जो जो बिहेवियर है, पर ये धर्मशास्त्र में व्यवहार का अर्थ होता है जो जुडिशियल प्रोसीजर होता है उसको व्यवहार कहते हैं, जो कोर्ट में जो आपके केसेस चलते हैं उसको व्यवहार कहते हैं। तो जो जुडिशियल प्रोसीजर का डिटेल्स भी धर्मशास्त्र में डिस्कशन होता है कि एक राजा का क्या कर्तव्य है, जब वो कर्तव्य है जो जज है, पहले जमाने में राजा लोग ही डिसीशन लेते थे, तो उसकी क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं। कोर्ट सिस्टम, जब कोई चीज पर आप डिस्कशन कर रहे हो सही है गलत है, तो वो कोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, जजेस कैसे होनी चाहिए, विटनेसेस कैसे होनी चाहिए, गलत विटनेस कौन है, सही विटनेस कौन है, किसका विटनेस ज्यादा प्रामाणिक माना जाएगा, किसका नहीं माना जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा जुडिशियल प्रोसीजर है ये भी धर्मशास्त्रों में आपको मिलता है, हिंदू धर्मशास्त्रों में। और उसके बाद जो क्राइम्स हम करते हैं, जो अपराध करते हैं, उस अपराध का क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, और हर अपराध का तो एक जैसा पनिशमेंट नहीं होता है ना, किसने किया, कब किया, किस कॉन्टेक्स्ट में किया, विटनेस किस टाइप के हैं, उसके बेसिस पर पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार से रिलेटेड ये जो जुडिशियल प्रोसीजर है उससे रिलेटेड और एक टॉपिक है, उसको कहते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित पेनेंस मतलब जब आपने कोई गलत काम किया है आप अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट करते हैं। तो धर्मशास्त्र ये भी रिकमेंड करता है कि आपके द्वारा कोई गलत काम हुआ है आप चाहो तो खुद के लिए प्रायश्चित कर सकते हो, आप उस गलती को मानो, और उसके लिए एक रिकमेंडेशन दिया गया, प्रिस्क्रिप्शन, कि ये अगर आप करो तो आपको आप अपने आप में उस पाप से छूट जाओगे या गलत काम की सजा आप अपने आप ले लोगे। तो उसकी डिटेल में डिस्कशन है, उसको कहते हैं प्रायश्चित। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रायश्चित और जो पनिशमेंट है, जो पेनेंस और पनिशमेंट, प्रायश्चित और दंड, ये दोनों में कैसे धर्मशास्त्र भेद करता है। हर 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 अपराध का प्रायश्चित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है तो ये पाप है, अपनी पत्नी या पति के अलावा किसी दूसरे के साथ संबंध रखना पाप है। अगर वो उस पाप को उसको रियलाइज करा दिया जाता है, मतलब उसको करता है, तो उस पाप के लिए उस दो ऑप्शन है, या तो पनिशमेंट ले या प्रायश्चित करे। तो प्रायश्चित की प्रोसीजर है ये सब चीजें करेगा या करेगी तो वो उसके वो जो पाप है वो उसको माफ कर दिया जाएगा। पर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी के साथ रेप किया, तो रेप का कोई प्रायश्चित नहीं होता, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलता है। तो इसी तरह कौन सा कर्म, अपराध, क्राइम कैसा है, उसके बेसिस पर उसके लिए प्रायश्चित अवेलेबल है या नहीं है, मतलब सेल्फ पनिशमेंट अवेलेबल है कि नहीं, वो मनुस्मृति धर्मशास्त्र उसको डिस्कशन करता है। और किस तरह के अपराध के लिए, गलत काम के लिए किस तरह के प्रायश्चित करने की जरूरत है वो भी धर्मशास्त्र प्रिस्क्राइब करता है, और अगर दंड देना है तो किस टाइप का दंड देना है वो भी धर्मशास्त्रों का विषय होता है। अगला टॉपिक जो जो धर्मशास्त्र का है वो है आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कह सकते हैं साइंस ऑफ गवर्नेंस, कैसे गवर्न करना है एक समाज को, एक देश को, राजा को कैसे होना चाहिए, मिनिस्टर्स को क्या होना चाहिए, क्या आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, जिसको आप कहते हैं पॉलिटी, आपका इकोनॉमी कैसे चलेगी, क्या फाइनेंशियल सिस्टम है, दूसरे शत्रु देशों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने देश में अगर विद्रोह हो तो कैसे उसको डील करना है, जो भी पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है या गवर्नेंस का सब्जेक्ट है वो भी धर्मशास्त्र का ही विषय होता है। तो ओवरऑल आपने जाना ये जो धर्मशास्त्र हम कहते हैं ये धर्म के बारे में शास्त्र है, और धर्म का जनरल नहीं, स्पेसिफिक लाइफ में जो स्पेसिफिक कंडीशन में जो धर्म को अप्लाई करना है वो डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसको धर्मशास्त्र कहते हैं। अगर आप कहेंगे धर्मशास्त्र का कंटेम्प्ररी क्या मीनिंग निकाले, आप कह सकते हैं टेक्स्ट बुक ऑफ कोड ऑफ लॉ। पर कोड ऑफ लॉ धर्मशास्त्र का केवल कोड ऑफ लॉ नहीं है। कोड ऑफ लॉ मान लीजिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स और रेगुलेशंस है, ये प्राचीन काल के एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन का विषय, रेगुलेशन उसके विषय होते थे धर्मशास्त्र के। उसके साथ आध्यात्मिकता में भी, रिलीजियस एक्टिविटीज में भी क्या हमारा रोल होना चाहिए वो भी धर्मशास्त्र डिस्क्राइब करता है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, इस धर्मशास्त्रों को स्मृति शास्त्र भी कहते हैं। स्मृति शास्त्र क्यों कहते हैं? स्मृति का मतलब रिमेंबर करना होता है, याद करना, पर उससे याद करने का कोई लेन देन नहीं है। हमारे हिंदू साहित्य में, हिंदू धर्म ग्रंथों में, बा सनातन धर्म के ग्रंथों में जितने भी लिटरेचर है उसको दो भाग में बांटा, कहते श्रुति और स्मृति। श्रुति में जो कर्ण परंपरा से, श्रुति परंपरा से एक दूसरे को सुनाया याद रखा, सुनाया याद रखा परंपरा से जो शास्त्र परंपरा चली, वो वेद से लेकर के जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, सारे वैदिक ग्रंथ जो है वो श्रुति माने जाते हैं। उसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, छह वेदांग जो आपने पढ़ा ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त आदि आदि छह दर्श तो छह दर्शन शास्त्र, ये सब श्रुति परंपरा में आते हैं। बाकी जो वैदिक साहित्य के बाद जो लिटरेचर आए वो सब स्मृति शास्त्र हैं। वो वेद को बेस बना करके आगे अपने अपने सब्जेक्ट में बातें करते हैं, पर वो एक अलग लिटरेचर है, उसको कहते हैं स्मृति शास्त्र। पर उन स्मृति शास्त्रों में स्पेसिफिकली धर्मशास्त्रों को भी स्मृति शास्त्र कहा जाता है। कितने धर्मशास्त्र हैं? धर्मशास्त्र अनेक हैं। कोई कहता है 20 है, किसी शास्त्र में प्रमाण मिलता है 20 धर्मशास्त्र हैं, कहीं 24 है। पर इन जनरल जो अवेलेबल हमारे पास अभी ग्रंथ हैं, उसमें हम 18 स्मृति शास्त्र मानते हैं। तो टोटल 18 स्मृति शास्त्र हैं। स्मृति शास्त्र धर्मशास्त्र एक ही बात है, और इनका जो मूल है ये अगर आपने सुना होगा, वेदांग में हमने डिस्कशन किया था कल्प ग्रंथ, नहीं सुना है तो वो पुराना वीडियो देखिएगा। वो कल्प ग्रंथों में जो चार तरह के सूत्र ग्रंथ हैं, तीन तरह के, गृह सूत्र, शुल्व सूत्र, चार तरह के, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्व सूत्र, धर्म सूत्र। ये जो धर्म सूत्र है जहां धर्मों की और ये लॉज की व्याख्या है, उसका ये जो आगे जाकर जो स्मृति शास्त्र है वो उसका एक्सपेंशन है। तो वो 18 मुख्यतः धर्मशास्त्र कौन कौन है? अंगिरस स्मृति, स्मृति आप साथ में जोड़ते जाइएगा, अंगिरस स्मृति, व्यास स्मृति, इन सब शास्त्रों के बाद में स्मृति लिखा होता है, दक्ष स्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, लिखित स्मृति, संवर्त स्मृति, शंख स्मृति, बृहस्पति स्मृति, अत्रि स्मृति, कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति, मनुस्मृति, औशनस स्मृति, हरित स्मृति, स्मृति, गौतम स्मृति और यम स्मृति। ध्यान रखिए, इसमें कुछ स्मृति ग्रंथ आपको सुना सुना कभी लगा होगा, जैसे मनुस्मृति। यस, हाँ, तो 18 स्मृति हैं, पर उनमें जो सबसे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। उसके बाद याज्ञवल्क्य, पराशर, ये भी मनुस्मृति के बाद ये भी सेकेंड लेवल पर पॉपुलर है। पॉपुलर ये इसलिए है कि इनके जो कंटेंट है वो ज्यादा अपील करता है लोगों को, तो इसीलिए मनुस्मृति सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सभी धर्मशास्त्रों में टॉपिक समान नहीं है, पहली चीज है। किसी में धर्म भी, लॉ भी, सब कुछ है। कुछ कुछ स्मृति शास्त्रों में, किसी स्मृति शास्त्र में केवल कोड ऑफ लॉ को लिया, आचार वाला पार्ट को हटा दिया, रिलीजियस स्पिरिचुअल पार्ट को। किसी धर्मशास्त्र में केवल रिलीजियस स्पिरिचुअल जो आचार है, जो जो धार्मिक कंडक्ट है, उस पर फोकस किया और जो कोड ऑफ लॉ है, गवर्नेंस है, उसको हटा दिया। तो धर्मशास्त्रों में अलग अलग किस्म कम बहुत टॉपिक होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, सभी धर्मशास्त्र एक टॉपिक पर, यह सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारे धर्मशास्त्र एक टॉपिक पर एक टाइप के विचार नहीं रखते हैं। मोस्ट ऑफ धर्मशास्त्र एक दूसरे से बहुत सारे मामलों में डिसएग्रीमेंट रखते हैं। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे? अगेन दोबारा ध्यान से सुनिए, धर्मशास्त्र धर्मों का जो जनरल डेफिनेशन है उस पर नहीं जाते हैं, उसमें तो सब एक ही हैं। डे टू डे लाइफ में, जब लाइफ में डिलेमा हो, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक टाइम पर मुझे किस तरह के बिहेव करना है, वो धर्मशास्त्रों में उसमें डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेस, स्थान अलग होने के कारण, लोगों के सोच समझ में फर्क होने के कारण, टाइम फर्क हो जाता है। कोई धर्मशास्त्र मान लीजिए 2000 साल पहले लिखा गया, वो उस सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसने कुछ रूल्स लिखे। जो धर्म ग्रंथ 1000 साल पहले लिखा गया, मतलब 1000 साल का फर्क आ गया, तो वो धर्मशास्त्र 2000 साल पहले लिखे गए धर्मशास्त्रों के बहुत सारे बातों को नहीं मानता, क्योंकि वो उसको अपडेट करता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है धर्मशास्त्र में। धर्मशास्त्र का कोई भी टॉपिक यूनिवर्सियल नहीं होता। जैसे मनुस्मृति पर आजकल काफी आप झगड़ा देखते हैं भारत में, वो बेवकूफी के कारण होता है, क्योंकि हर स्मृति शास्त्र अपने समय के हिसाब से स्थान काल पात्र, टाइम प्लेस एंड सिचुएशन एंड द पर्सन, इसके हिसाब से अपना रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। उसके 100 साल के बाद दूसरा धर्मशास्त्र का राइटर आता है, वो उसमें बहुत सारे चीजें चेंज कर देता है। तो ये चेंजेबल होते हैं, क्योंकि 500 साल पहले जो सिचुएशन था, आज का सिचुएशन अलग है, उस समय का सोच अलग था, उसके सोच अलग है। तो धर्मशास्त्र हमेशा बदलते रहते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर टू जो ध्यान रखना है, स्थान भी अलग अलग होते हैं। आज भी आप देखेंगे जो इंडियन लॉज हैं वो अलग हैं, अमेरिका के लॉज अलग हैं। तो धर्मशास्त्र हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज जो होते हैं वे धर्मशास्त्र हैं, जो सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए हेल्प करते हैं। पर अमेरिकन लॉज अलग हैं। अगर कोई अमेरिका में लिखा गया जो धर्मशास्त्र है, वो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, यहां के हिसाब से ठीक है। आप रास्ते में राइट तरफ गाड़ी चलाते हैं, लेफ्ट तरफ आप दूसरों को आने देते हैं। भारत में आप लेफ्ट तरफ चलाते हैं, बाएं तरफ चलाते हैं, राइट में आने देते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो हर देश का अलग अलग है। तो धर्मशास्त्र का विषय हमेशा यूनिवर्सियल और इटर्नल थॉट नहीं होते हैं, वो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। और एक मजेदार चीज जो जानने की है, ये खास करके जो मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि, ये अपने अपने जमाने में इतने पॉपुलर थे। अगर आप जो पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, हाँ ये देख लीजिए, तो स्मृति शास्त्र एक दूसरे से समय के हिसाब से अलग अलग विचार रखते हैं। उनके जो इंजंक्शंस है या प्रोहिबिशंस है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलर सोशल सराउंडिंग के बेस पर होता है। और सराउंडिंग और एसेंशियल कंडीशंस जो सोसाइटी का चेंज होता है, वो चेंज होने के साथ साथ जो नए स्मृति शास्त्र आते हैं वो भी इसी के हिसाब से अकोमोडेट करते हैं, नए नए लॉज को अकोमोडेट करते हैं। ये जो धर्मशास्त्र, खास करके मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि, ये मीडिएबल एज में, मीडिएबल एज का मतलब लास्ट 1-1.5 हजार साल पहले से लेकर के 500 साल पहले तक, भारत से लेकर म्यांमार से जो साउथ ईस्ट एशिया है, भारत, म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, उन सब देशों में मनुस्मृति जो बुद्धिस्ट लॉ वहां चला, जो कोड ऑफ लॉ वहां चलता था, वो सब मनुस्मृति के बेस पर ही चलता था उन देशों में भी, जबकि वो बुद्धिस्ट राजा होने के बावजूद मनुस्मृति के बेस पर वो अपना देश चलाते थे। इसी तरह जो कंबोडिया और इंडोनेशिया जो प्योरली हिंदू देश थे, वहां भी मनुस्मृति को और जो बाकी स्मृतियों के आधार पर वो अपने धर्म और गवर्नेंस को चलाते थे। अब इसे समझ सकते हैं धर्मशास्त्र कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता था एक टाइम में। अब कहेंगे चलो ये तो हिस्ट्री की बात हो गई, आजकल तो इसकी कोई जरूरत नहीं। आज भी जो इंडियन जो गवर्नमेंट है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो मनुस्मृति आदि स्मृति शास्त्रों के बेस पर है। खाली इतना नहीं, जितने जो सिविल कोड्स हैं, सिविल लॉज हैं भारत में, मोस्ट ऑफ सिविल लॉज इन्हीं धर्मशास्त्रों के आधार पर ही बनाए गए हैं, जिसमें मनुस्मृति का, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप इससे समझ पाएंगे धर्मशास्त्र डे टू डे लाइफ में, इवन आज भी आपको पता नहीं होता है कि आप जिस रूल को फॉलो करते हैं वो मनुस्मृति के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया, वो आज भी उसी के हिसाब से हम चलते हैं। विशेष करके इसका एक पार्ट और बोल के हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। इवन जो आपके शादी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर, मतलब जो पैतृक संपत्ति है तो उस पर माँ बाप के बाद किसका अधिकार होगा, कोई मर जाए तो उसके बाद वो किसको मिलेगा, ये सब आज भी इंडियन जो लॉज में उन्हीं स्मृति शास्त्र के आधार पर ही डिसाइड होता है कि जो अपना पैतृक संपत्ति का जो फैमिली इनहेरिएंट जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, मैरिज की जो 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 कॉम्प्लिकेशन है उसका सोल्यूशन भी इन्हीं स्मृति शास्त्रों के आधार पर होता है। तो आज भी हमारे जाने अनजाने हिंदू समाज इन्हीं स्मृति शास्त्रों के आधार पर ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली चलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हिंदू माइंड को ठीक से समझने की कोशिश करे, स्टडी करने की कोशिश करे, इंडियन सोसाइटी को जानने की कोशिश करे, ये इंडियन सोसाइटी ऐसा क्यों है, उसमें इस तरह की सोच क्यों है, तो आपको धर्मशास्त्र पढ़ने की जरूरत है। तभी आप समझ पाएंगे इंडियन सोशल स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या गलत है, क्या सही है, वो सब आप धर्मशास्त्र को पढ़ने से ही जान पाते हैं। तो ये हुए धर्मशास्त्र, बेसिकली जिसमें 18 स्मृति शास्त्र है। अगला जो लिटरेचर है उसको हम कहते हैं इतिहास। इतिहास, अब इतिहास सुनते ही आपको लगेगा हिस्ट्री, नहीं, इतिहास का सिंपल मीनिंग है, जो इतिहास की जो एटिमोलॉजी है, इति दस सो ह इंडीड डेफिनेटली आस इट वाज, ऐसा सचमुच डेफिनेटली ऐसा हुआ था। तो जो हुआ था डेफिनेटली उस चीज को डिस्क्राइब करने का नाम इतिहास बताया गया, पर डिस्क्राइब करते समय जब इसको नैरेट किया जाता था वो प्योरली आज इट इज नहीं बताया जाता था, उसमें काफी सारा मिथ का एलिमेंट भी रहता था, थोड़ा सुपरफिशियल चीजें, सुपर नेचुरल चीजें उसमें ऐड किया जाता था। और ये जो इतिहास है उसमें मोरालिटी, फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, स्टेटक्राफ्ट, गवर्नेंस वगैरह ये भी उसमें हमको देखने को मिलता है। कौन से ग्रंथ हैं जो इतिहास में काउंट होते हैं? कंप्यूटर, तो वो है वाल्मीकि का लिखा हुआ रामायण, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण और महर्षि व्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत। तो ये दोनों लिटरेचर हैं जिनको इतिहास कहा जाता है। मॉडर्न भारत में पहले इतिहास और पुराण वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मण ग्रंथों को कहा जाता था, लेटर वैदिक पीरियड में महाभारत और रामायण को इतिहास माना जाता है। महाभारत रामायण धर्म शास्त्र नहीं है, ध्यान दीजिए। शास्त्र का हमारे यहां तीन तरह के शास्त्र मिलते हैं, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको जितने भी शास्त्र हैं उसको तीन तरह से डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं प्रभु सम्मित, प्रभु संहिता, मतलब ऐसे शास्त्र जो हमें कमांडिंग नेचर में होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कोई पेरेंट्स हो, माता पिता हो, गुरु हो, आचार्य हो, जब आपको कुछ बोलते हैं ना, उनकी वाणी में वो कमांडिंग नेचर होता है, ये गलत है, ये सही है, यू हैव टू डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, ये कमांडिंग नेचर में। तो शास्त्र का लिटरेरी मीनिंग भी यही है, शास्ति इति शास्त्र, जो आपको डिसिप्लिन लाए, डिसिप्लिन लाने की कोशिश करता है, उसी को शास्त्र कहते हैं। तो हमारे जितने भी वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र जो आज पढ़ा, उसको कहते हैं प्रभु सम्मत, प्रभु के तरह वो बात करते हैं, प्रभु मालिक के तरह, बड़ों के तरह, गुरुओं के तरह, आचार्यों के तरह। दूसरे तरह के लिटरेचर है जिसमें इतिहास आता है, उसको हम कहते हैं सुहृत सम्मित, जो दोस्तों की तरह बात करता है, फ्रेंडली ट्रीटीज हैं, दोस्तों की तरह। कैसे? एक तो आपको किसी ने, आपने कोई गलत काम किया, आपको आपके पिताजी ने, गुरु ने, आचार्य ने बोला देखो ये गलत है, नहीं करना, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, ये गलत है, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये पनिशमेंट मिलेगा, ये आपका नुकसान होगा, ये फायदा होगा, तो यू शुड नॉट डू दिस और यू शुड डू दिस। पर जब आपके दोस्त बताता है, वो इस तरह नहीं बताता है, वो कमांडिंग नेचर में नहीं बताता है। जो दोस्त बताता है वो आपको इंसिडेंट सुनाता है, देखो उसने सिगरेट पीता था, देखो उसका कैंसर हुआ, वो मर गया, देखो उसने झूठ बोला, देखो कैसे उसका तो जो दोस्तों में जब दोस्त आपको समझाता है, दोस्त मतलब वेल विशर फ्रेंड, जो वेल विशर फ्रेंड आपको समझाता है, उसकी तरीका अलग होती है, वो ज्यादा नैरेटिव वे में होता है, उसमें नैरेशंस होते हैं। तो जो महाभारत रामायण वो सुहृत सम्मत है, मतलब दोस्तों की तरह, वेल विशर की तरह वही बातें बताने की कोशिश करता है जो बाकी शास्त्र हमें थोड़ा कमांडिंग नेचर में बताते हैं। रामायण महाभारत में आपको क्या मिलता है? स्टोरीज मिलता है ना? तो स्टोरीज को जब आप पढ़ते हैं, वही चीजें जो शास्त्रों में बताया गया, उसका जो एक तरह की जो प्रैक्टिकल रूप है, वो हमें महाभारत रामायण में मिलता है। देखो रावण ने ये गलत काम किया, उसको ये फल मिला। राम देखो ऐसा है, पिता माता का रिस्पेक्ट करता है, पत्नी का रेस्पेक्ट करता है, अपने भाइयों का रेस्पेक्ट करता है, शत्रु को इस तरह ट्रीट करता है। तो आपको पता, जो अच्छे आदमी होता है वैसे धर्म को पालन करता है, जो बुरे आदमी ऐसे धर्म का पालन करता है। इसी तरह महाभारत में देखते हैं कि छल किसको कहते हैं, कपट किसको कहते हैं, दुर्योधन के छल में और भीम के छल में क्या फर्क है, कृष्ण के स्ट्रैटेजी में और अर्जुन के स्ट्रैटेजी में क्या अंतर है, भीष्म इतने ज्ञानी होने पर भी गलत हो सकता है, युधिष्ठिर सच्चा होने पर भी पाप कर सकता है। तो ये सब चीजें, कौरवों के साथ रहते हुए भी, दुष्टों के साथ रहते हुए भी कोई आदमी अच्छा हो सकता है। सो एक नॉर्मल सोसाइटी में, डे टू डे लाइफ में धर्म कैसे, किस किस रूप में लोग उसको यूज करते हैं और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो महाभारत रामायण बताते हैं विथ हिस्टोरिकल नरेशन, ऐतिहासिक घटना के बेसिस पर, ऐतिहासिक जो घटनाएं सचमुच हुई थी। दोबारा कहूं, महाभारत रामायण में जो कथाएं आपको मिलती है, वो वो कथाएं स्टोरी वो सच घटनाएं हैं, पर उसको डिस्क्राइब करते समय, नैरेट करते समय कवि ने फ्रीडम लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मूवीज वगैरह सीरियल्स वगैरह देखते हैं, किसी हिस्टोरिकल थीम पर कोई मूवी बनाए तो उसमें फिर नाच गाना और भी बहुत कुछ आ जाते हैं। इसी तरह रामायण और महाभारत में भी वो सब चीजें हमें देखने को मिलता है, वो प्योर इतिहास नहीं है। उनमें से हम पहले रामायण की बात करेंगे। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जो रामायण है उसको हम आदिकाव्य कहते हैं। आदिकाव्य समझते हैं, द फर्स्ट एपिक, पहला काव्य। महर्षि वाल्मीकि ऋषि हैं, पर उन्हें कवित्व की प्रतिभा थी, कवित्व का वो टैलेंट था कवि होने का, तो उन्होंने रामायण को सिर्फ एक सूखा नीरस स्टोरी के रूप में नहीं रखा, उसको उन्होंने ऐसे नैरेट किया कि लोग एंजॉय कर सकें, अपने आप को उसे कनेक्ट कर सकें, इसीलिए काव्य है। तो वाल्मीकि के बारे में बड़ा सुंदर कहानी आती है कि वो ऋषि थे और एक दिन अपने शिष्यों के साथ, साथियों के साथ सरयू नदी में नहाने गए। नहाकर जब ऊपर उठे, नदी से ऊपर उठे, देखा एक शिकारी ने एक पेड़ में दो पक्षी बैठे हुए थे और वो पक्षी पति पत्नी थे, मतलब प्रेमिक थे, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे वो दोनों पक्षी, मतलब चिड़िया बर्ड्स। और शिकारी ने बाण चला के उनमें से एक पक्षी को मार गिराया। वाल्मीकि ने देखा तो वो ऋषि थे, उनका दिल टूट गया, बड़े दुख से परेशान हुए। और अचानक अचानक विदाउट एनी एफर्ट सडनली उनके मुंह से कुछ निकला और एक तरह के शाप था। शाप समझते हैं, अभिशाप था, कर्ज था। क्या था? मां निषाद त्वमगम शाश्वती समाहा, ये निषाद है शिकारी, तुम जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो। यत क्रौंच मिथुना देख मवधि काम मोहितम, तुमने ये जो क्रौंच पक्षी, ये जो दो बर्ड्स हैं जिनका नाम क्रौंच है, उनमें से जो प्यार में मग्न थे, डूबे हुए थे, उनमें से एक पक्षी को तुमने मार डाला, तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, बोल दिया। But the way he said it, उसमें एक रिदम था, उसमें एक श्रुति मधुरता था, एक मिठास था। तो उनके शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये तो आपने जो शाप दिया उसमें, गुस्से में शाप दिया, पर उसमें मिठास है, मतलब द वे यू नैरेटेड, द वे यू सेड इट, देयर इज समथिंग यूनिकनेस, इट्स नॉट नॉर्मल सेंटेंस। तो फिर लोगों ने उनको बताया कि आप में काव्य लिखने की प्रतिभा है, इवन आप गुस्से में भी बोलते हो तो उसमें एक चार्मिंग फैक्टर है, तो आप कुछ लिखिए, क्योंकि आप कुछ लिखेंगे वो लोग उसको एंजॉय करेंगे। तो वाल्मीकि ने कहा कि क्या लिखूं, किस पर लिखूं। तो फिर उन्होंने पता लगाया, नारद जी से पता, और उनका कंडीशन था कि मुझे ऐसे व्यक्ति पर लिखना है जो जिंदा हो, कोई हिस्टोरिकल पर्सन ना हो, अभी हो, और उसमें ये एक मनुष्य हो, इट शुड बी ए ह्यूमन बीइंग, और उसमें ये क्वालिटीज हो, मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जिस पर मैं लिखूं। तो बहुत लोगों को पूछा, नारद से भी पूछा, तो नारद ने उनको बताया ऐसा एक व्यक्ति है, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा है, इक्ष्वाकु खानदान में, और सूर्य वंश में, उनका नाम राम है। तब तक श्री राम रावण को मार के अयोध्या वापस आ चुके थे, अयोध्या में उनका राज्य स्थापित हो चुका था, वो शासन कर रहे थे। तभी वाल्मीकि को पता चला नारद से, वही एक व्यक्ति है जो आप जो जो कंडीशंस रखते हैं वो कंडीशन उसी में ही सब फिट लगता है। फिर वाल्मीकि ने बाद में उनके बारे में डिटेल जाना और उसके बारे में जो लिखा, उस काव्य का जो हिस्टोरिकल नरेशन, जो हिस्टोरिकल एपिक, उसका नाम रखा रामायण। रामायण का एक्चुअल मीनिंग क्या है? रामस्य अयनम, राम की अयन मार्ग गति, गति मतलब जर्निंग, जर्निंग ऑफ राम, पैदा होने से लेकर दोबारा राम राज्य स्थापित करने तक राम ने कैसे जीवन को जिया, दुनिया में कैसे व्यवहार किया, वो रामायण का चरित्र है। रामायण में राम की मृत्यु के बारे में कोई कोई रेफरेंसेस नहीं है। राम राज्य स्थापित करने के साथ राम की वाल्मीकि रामायण की कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद जो स्टोरी आपको सुनने को मिलता है वो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड जो कि प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त समझते हैं, बाद में किसी ने उसको वाल्मीकि रामायण के साथ जोड़ दिया और जिसमें मोस्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल चीजें आपको मिलता है। तो ये तो हुआ रामायण, जो एक आदर्श चरित्र कैसा होता है, धर्म को पालन करने वाला चरित्र, वो आपको रामायण में दिखता है। और उसके बाद महर्षि व्यास ने महाभारत लिखा। महाभारत, ग्रेट भारत, इंडियन, मतलब भारत अब इंडिया का नाम आ गया। उसके लिखने वाले व्यास, उनका असली नाम है कृष्ण द्वैपायन, ध्यान दीजिए, कृष्ण द्वैपायन उनका असली नाम है। कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत लिखा। महाभारत का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। कहा जाता है वो एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन कल्चर, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म का जो मॉडर्न, जिसको हम हिंदू कहते हैं, मतलब सनातन धर्म का जो धर्म है, फिलॉसफी है, इवन जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो 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 साइंस है, जो गवर्नेंस है, उन सबका आपको महाभारत में मिलेगा। महाभारत सिर्फ स्टोरी नहीं है, उसमें आपको पॉलिटी भी मिलेगा, उसमें आपको स्टोरीज भी मिलेगा, उसमें माइथोलॉजी भी मिलेगा, उसमें आपको धर्म भी मिलेगा, उसमें आपको फिलॉसफी भी मिलेगा, रियल स्टोरी, रियल हिस्ट्री भी मिलेगी, डायलॉग्स मिलेगा। और महाभारत में दर्जनों दर्जनों डायलॉग्स हैं, डायलॉग समझते हैं, संवाद। और उन्हीं में से एक फेमस डायलॉग जो आज घर घर में प्रचलित है, और वो कौन सी डायलॉग है, वो है, आज पता नहीं कंप्यूटर क्यों काम नहीं करता, या ये है भगवत गीता। ये जो गीता आप लोग घर घर में, लोग हर हर हिंदू के घर में आपको गीता मिलता है, गीता पढ़ते हैं, वो गीता महाभारत का ही एक पाठ है। महाभारत के भीष्म पर्व का 25 से 42वां 25th चैप्टर से 42nd चैप्टर तक का जो पाठ है, वही बाद में गीता के रूप से अलग से प्रिंट हुआ, जिसको गीता कहते हैं। और गीता क्या है, एक डायलॉग है, संवाद है कृष्ण और अर्जुन के बीच में। इसी तरह विदुर नीति, वो भी संवाद है विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में। यक्ष युधिष्ठिर डायलॉग, ऐसे दर्जनों दर्जनों डायलॉग्स हैं जो बहुत फिलोसफिकल और ज्ञान से भरे पूरे डायलॉग्स होते हैं। केवल गीता नहीं, ध्यान रखिए, महाभारत में केवल गीता नहीं, गीता जैसे अनेक डायलॉग्स हैं, पर गीता डेफिनेटली बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा उपनिषदों का एक तरह की शैडो मिलता है, और भी बहुत सारे चीजें जो मिलता है, और छोटा सा है, तो इसीलिए वो बहुत पॉपुलर हुआ। तो ये है महाभारत और रामायण और गीता जिसका पार्ट है। और महाभारत रामायण लोगों के ऊपर इतना इंपैक्ट डाला है पिछले 2-3 हजार सालों से, केवल भारत में नहीं, भारत से लेकर के ये जो पूरा आप मैप देखते हैं, ओवरऑल जो इंडियन सब कंटिनेंट, और इंडियन सब कंटिनेंट से आगे म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस तक, ये जो पूरा साउथ एशिया बेल्ट, वो सब महाभारत रामायण, स्पेशली रामायण के कहानियों से भरा पड़ा हुआ है। और दुनिया के मोस्ट ऑफ कंटिनेंट में, ज्यादातर देशों में, पुराने कल्चर में रामायण का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। महाभारत से रामायण ज्यादा भारत के बाहर पॉपुलर हुआ था, और वो आज भी अगर आप साउथ ईस्ट एशिया जाए, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कहीं भी जाएं, अल्तो उनके रिलीजन बदल चुके हैं, कोई मुस्लिम कंट्री है, कोई बुद्धिस्ट कंट्री है, कोई क्रिश्चियन कंट्री है फिलीपींस जैसा, पर वहां भी आज भी आपको रामायण और महाभारत के प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है आम लोगों में, वो अनडिस्क्राइबेबल, बताने लायक नहीं है, इतना ज्यादा वो रहे। और आज भी आप देखते हैं भारत के लोगों के जनमानस में मन में कितना ज्यादा राम कृष्ण महाभारत रामायण इंपैक्ट डालता है। और एक इंटरेस्टिंग और एक बात कह के आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लिटरेचर पर। रामायण इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ तो भारत की जितने भी भाषाएं हैं वो आदिवासी ट्राइबल डायलेक्ट्स हो या जो दूसरी बड़ी बड़ी भाषाएं हैं हिंदी तेलुगु तमिल मराठी उड़िया बंगाली असमी गुजराती मलयालम कोई भी भाषा आप नाम लीजिए सब भाषाओं में रामायण और महाभारत के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं। न केवल इतना साउथ ईस्ट एशिया में भी थाईलैंड के में अपने थाई भाषा में रामायण है इंडोनेशिया का अपना बाली भाषा में काबी भाषा में रामायण है मलय भाषा में मलेशिया में रामायण है उन सबका अपना अपना रामायण है। और प्रॉब्लम है कि सब रामायण में स्टोरी तो राम की है वाल्मीकि रामायण के बताए गए स्टोरी के बेस पर ही सब में लिखा गया है पर उसमें आगे जाकर के कैरेक्टर चेंज हो गए कैरेक्टर का रिलेशनशिप चेंज हो गया किसी रामायण में सीता रावण की पत्नी है किसी रामायण में विभीषण राम का भाई है कहीं विभीषण राक्षस है रावण मनुष्य है कहीं सीता राम की बहन है सो वो आगे जाकर काफी कॉम्प्लिकेशन हुआ है। तो रामायण की जो ऑथेंटिक बुक है वो केवल केवल वाल्मीकि रामायण है। अगला जो शास्त्र डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न हिंदू लोगों में मॉडर्न मतलब पिछले 500,000 साल में जो हिंदू लोगों के माइंड को पूरी तरह कब्जा कर रखा है रिलीजियसली वो लिटरेचर है पुराण। आज क्यों कम तो पुराण बेसिकली पुराण एक वास्ट लिटरेचर है उसमें लाखों 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 श्लोक हैं और सैकड़ों पुराण के ग्रंथ हैं पुराण के ग्रंथ हैं सैकड़ों लिटरेचर हैं उनके टॉपिक भी फिक्स नहीं है सैकड़ों तरह के टॉपिक हैं। डेफिनेटली जो सबसे बड़ा पोर्शन है पुराण का वो स्टोरी है कथाएं कहानियां और वो कहानियां मोस्ट ऑफ जो कहानियां है वो मिथ्स है माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उसके अलावा उसमें लेजेंड्स भी हैं किसी वीरों की ऋषियों की मुनियों की राजाओं की हिस्टोरिकल स्टोरीज भी आपको मिलेगी फोक टेल्स भी मिलेगा। फिर उसके अलावा जो तीर्थ कहीं किसी पुराण में तीर्थ क्षेत्रों का हिस्ट्री या उसकी जो ग्लोरिफिकेशन मंदिरों के बारे में कहीं मेडिसिन के बारे में कुछ एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस कभी संस्कृत भाषा ग्रामर के बारे में कभी किसी ज्योग्राफी का जो हमारे संस्कार होते हैं दान जो एथिक्स है इसी तरह जो फेस्टिवल्स वगैरह करते हैं बहुत सारे पुराणों में तो लव स्टोरीज भी मिलते हैं राजाओं के ऋषियों के अप्सराओं के देवताओं के जो लव स्टोरीज भी मिलते हैं और कैसे जो डिवाइन इंटरवेंशन है वह हर पुराण में भगवान अलग अलग तरह के भगवान होते हैं हम आएंगे डिटेल में तो भगवान कैसे इंटरफेयर करता है ह्यूमन लाइफ में कॉस्मिक अफेयर्स में इंटरफेयर करता है और उसके अलावा थियोलॉजी और फिलोसफी उसमें मिलती है। पुराणों की ऑथोरिटी शास्त्र के धर्मशास्त्रों के दृष्टि से पुराण की कोई ऑथोरिटी नहीं है ऑथोरिटी समझते हैं मतलब पुराण की बात कभी रेफरेंसेस के रूप में कभी यूज नहीं हुआ है कि पुराण में लिखा है इसीलिए मानना चाहिए ऐसा कभी नहीं हुआ है। पुराणस वेयर नेवर यूज्ड एज ऑथोरिटी जैसे आजकल मॉडर्न हिंदू लोग क्योंकि अनपढ़ होते हैं मोस्टली क्यों कहें 99% जो हिंदू लोग है रिलीजियसली दे आर इलिटरेट हो सकता है कुछ पढ़ा लिखा हो अपने अपने सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ हिंदू आर रिलीजियसली इलिटरेट सो वो जो सुनी सुनाई बातें हैं इवन पुराणों को भी वो कोई पढ़े हुए बहुत कम होते हैं। पुराण की कहानियां घर घर में गली गली में सुनाई जाती है वो सुनी सुनाई कहानियों के अलावा उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, तो अपने ईगो को जबरदस्ती सेटिस्फाई करने के लिए वो पुराण को ही कोट करते रहते हैं, क्योंकि उनको और कुछ पता नहीं है। वो जस्ट अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पूरा हिंदू धर्म का सत्यानाश करने के लिए मोस्ट ऑफ हिंदू लोग तैयार बैठे होते हैं, और वो ईगो भी इग्नोरेंस के कारण। पुराणों में और अलग अलग अमरकोश आदि जो लेटर जो जो शब्दकोश टाइप के ग्रंथ आए, उनमें पुराणों में पांच तरह के विषयों की बात की जाती है, कि मोस्टली पुराणों में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको पांच तरह से वो बांटे हैं, और इसके बेस पर वो पुराण की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, उसको कहते हैं पंच लक्षण। वो पंच लक्षण क्या है, मतलब पुराण को पहचानने के लिए पांच स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। पहली चीज है कि पुराण में आज कुछ पुराण में पहला टॉपिक होता है सर्ग। सर्ग का अर्थ होता है, पुराणों में कॉस्मोलॉजी के बारे में डिस्कशन मिलता है, कॉस्मोजोनी, सृष्टि कैसी हुई, और हर पुराण की अपनी थ्योरी है, मोस्टली माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, कोई रियल स्टोरी, कोई फिलोसॉफिकल या साइंटिफिक स्टोरीज नहीं, मोस्टली माइथोलॉजिकल स्टोरीज है कि ये दुनिया बनी कैसे। फिर उसके बाद आता है प्रतिसर्ग, फिर ये प्रलय कैसे होता है, नष्ट कैसे होता है, अगेन इसे माइथोलॉजिकल स्टाइल में जो सृष्टि के प्रलय के डिस्कशन है। फिर वंश, पुराणों का तीसरा टॉपिक होता है वंश, मतलब द जेनियोलॉजी ऑफ माइथोलॉजिकल देवाज, देवीज, किंग्स, हीरोज एंड सेजेस। अलग अलग जो पौराणिक देवी देवताएं हैं, पौराणिक देवी देवताएं, पौराणिक चरित्र, उन देवी देवताओं का, राजाओं का, अपने सोसाइटी में जो बड़े बड़े हीरोज हैं, और ऋषि मुनियों की जो जो वंश है, वंश परंपरा है, वो कहां से पैदा हुआ, वो उसके कहां से पैदा हुआ, ये जो 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 जेनेलोजी है वो पुराणों में हमें जानने को मिलता है। ये वाली चीज बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आगे जाकर हिस्ट्री वालों के लिए पुराणों के ये सब चीजें बहुत हेल्प करता है। अगला है मन्वंतर, जो कॉस्मिक साइकिल्स होते हैं, जो सृष्टि प्रलय के जो अलग अलग टाइम यूनिट होते हैं, आपको पता है जैसे चार युग, कली कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग, इन चारों के कॉम्बिनेशन को महायुग कहते हैं, है ना। तो 72 महायुग में एक मन्वंतर होता है, फिर 14 मन्वंतर में कल्प होता है, फिर एक कल्प दो कल्प में एक ब्रह्मा दिन रात होता है। तो इस तरह जो टाइम यूनिट का वर्णन है, तो उसमें जो 72 महायुग में एक मन्वंतर होता है, मतलब एक एक साइकिल ऑफ कॉस्मिक, जो कॉस्मिक साइकिल है वो चेंज होता है, और हर वो नए कॉस्मिक साइकिल को मनु के साथ जोड़ा जाता है, तो उसको कहते हैं मन्वंतर। तो उसकी भी डिटेल्स उसमें पुराण ग्रंथों में हमें मिलते हैं। और लास्ट जो टॉपिक होता है वंशानुचरिता, बेसिकली जो बड़े अलग अलग राजा लोग होते हैं या ऋषि मुनि लोग होते हैं, उनके टाइम पीरियड में उनकी जो लेजेंड्स हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है, इसको कहते हैं वंशानुचरिता। जितने भी पुराण हैं जिनका डिस्कशन अभी हम करेंगे, मोस्टली जो बड़े बड़े फेमस हैं वो 18 महापुराण हैं, फिर 18 उपपुराण हैं, पर पुराण 100 से भी ज्यादा हैं। उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो हाईली इनकॉन्सिस्टेंट है, मतलब एक पुराण में अगर शिव को बताया गया कि ये परमात्मा है, दूसरे पुराण में शिव सबोर्डिनेट हो जाते हैं, विष्णु देवता हो जाते हैं, किसी पुराण में बताया कि प्रलय ऐसे हुआ, ब्रह्मा से शुरू हुई शिव और विष्णु के द्वारा, दूसरे पुराण में ठीक उसके अपोजिट बताया जाता है। तो उनके जो सब्जेक्ट मैटर है बड़ा इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं। नंबर 2, पुराणों के जो ऑथर हैं उनका वो सब अननोन है, अनोनिमस है, किसी भी पुराण का ऑथर का कहीं नाम नहीं मिलता। पब्लिक में जो प्रचार किया गया कि व्यास ने लिखा 18 महापुराण, ये कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इन चीजों को नहीं मानता, क्योंकि इसका कोई रेफरेंसेस नहीं है। जो सबसे पुराना पुराण है वो फर्स्ट सेंचुरी के आसपास आना शुरू हुआ, फर्स्ट सेंचुरी ऑफ क्राइस्ट जिसको कहते हैं ना, मतलब अभी जैसे 2020 है तो 2000 साल पहले से पहला पुराण का शुरुआत हुआ। और व्यास, महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा, वेदांत दर्शन लिखा, वो 5000 साल पहले उनका उनका जीवन काल है। तो महाभारत को 5000 कितने साल हो गया, तो वो व्यास का पुराण से कोई लेन देन दूर दूर का नहीं है। और भी बहुत सारे प्रूफ है, जो लोग को एकेडमिकली पढ़ते हैं उनको पता है महर्षि व्यास का पुराणों से कोई किसी भी तरह का लेन देन नहीं है। इवन ऐसे पुराण भी है जो 400 साल पहले लिखे गए, 500 साल पहले लिखे गए, 200 साल पहले भी लिखे गए, तो वहां व्यास कहां से आएंगे? व्यास कोई सारे 18 महापुराण, 18 उपपुराण या जो भी सैकड़ों पुराण है वो एक ही समय पर नहीं लिखे गए हैं। वो 100 साल, 200 साल, 400 साल के बाद पुराण, अलग अलग पुराण लिखे गए हैं। नंबर टू, ये जो पुराण है वो सेंचुरी सेंचुरी लगा इनको लिखने में। मतलब एक पुराण अगर कभी फर्स्ट सेंचुरी में लिखा गया, दूसरा फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी में लिखा गया, तीसरा हो सकता है सातवें आठवें सेंचुरी में लिखा गया, तो उनमें सेंचुरीज का फर्क है, सैकड़ों सालों का फर्क है एक पुराण से दूसरे पुराण के बीच में। और ये जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग होते हैं उनको पता है, वो रिसर्च करते हैं लैंग्वेज के बेस पर, जो सब्जेक्ट मैटर के बेस पर, वो सबको पता होता है। तो इसीलिए सब पुराण एक जैसा नहीं है। अब आते हैं नंबर्स पर, कितने पुराण होते हैं। जैसे मैंने बताया पुराण सैकड़ों पुराण हैं, सैकड़ों पुराण हैं, पर उनमें से जनरली 18 पुराणों को महापुराण के रूप में माना जाता है, 18 महापुराण। आज वो 18 महापुराण का जो नाम है वो भी पक्का नहीं है। किसी पुराण में 18 पुराण की लिस्ट में कुछ दो चार ऐसे हैं जो बाकियों में नहीं है, किसी दूसरे लिस्ट में कुछ दूसरा नाम है, पर ओवरऑल जो मैं जो आपको 18 पुराण अभी रखूंगा वो भी कोई 100% श्योर नहीं। कुछ लोग दो चार और एक्स्ट्रा मानते हैं, आगे पीछे होते हैं। कुछ लोग जो 18 महापुराण में से 4-5 को उपपुराण में दिखाते हैं, तो ये हमेशा इनकंसिस्टेंट रहता है। तो भी जो आज के डेट में जो पॉपुलर नंबर है मैं आपको बताता हूं, 18 पुराण कौन है। अग्नि पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म, लिंग, मार्कंडेय, मत्स्य, नारद, पद्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। दोबारा कहूं, इन पुराणों में जिनका नाम महापुराण के रूप में है, कुछ दूसरे लिस्ट में उनका नाम उपपुराण के रूप में भी है। और 18 महापुराण है ऐसा नहीं है, महापुराण तो बहुत है पर कोई 18, कोई 20, कोई 25 मानता है। जो नेक्स्ट लिस्ट है ये उपपुराणों का, उपपुराण मतलब जो पुराण, उपपुराण का सिंपल ट्रांसलेशन होगा जो माइनर पुराण आज हैं। पर ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोग जिसको महापुराण की लिस्ट में रखते हैं, दूसरे लोग उसको उपपुराण में डाल देते हैं, कुछ लोग उपपुराण की लिस्ट को महापुराण में डाल देते हैं। तब भी मैं जो दिखाऊं वो 100% वही उपपुराण है नहीं है, इनमें कुछ हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे ये महापुराण में आता है, तो वो प्रॉब्लम ये रहेगा। तब भी मैं आपको जो भी एक ऑथेंटिक वो है मैं बताता हूं। तो उपपुराण 18 है, आदि, नरसिंह, नंद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, मानव, औशनस, देवी भागवत, आरुण, कालिका, महेश्वर, शांब, सूर्य पुराण, पराशर पुराण, मरीच पुराण और भार्गव पुराण। पर इतने 18 उपपुराण है ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे लिस्ट में और भी बहुत सारे पुराण है। वरुण पुराण, वशिष्ठ पुराण, गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, हंस पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कल्कि पुराण, आत्म पुराण, पुरुषोत्तम पुराण, बृहत विष्णु पुराण, इस तरह के बहुत सारे पुराण है। एक आप देखेंगे ये हरिवंश पुराण मैंने बोल्ड कर रखा है, ये हरिवंश पुराण वही है जहां पहली बार राधा का नाम आया है। ये जो आजकल देखते हैं ना गली गली में राधा कृष्ण, ये राधा नाम का कैरेक्टर है, इतना फॉल्स और इतना फिक्शियस कैरेक्टर है कृष्ण के साथ जो बाद में लोगों ने जोड़ा ना, महाभारत में इसका कोई रेफरेंसेस मिलता है, पुराणों में भी जो महापुराणों में भी इसका कहीं रेफरेंसेस मिलता है। ये हरिवंश पुराण मुश्किल से मेरे ख्याल से 1200-1300 में, 1200-1300 सेंचुरी में, मतलब आज से 600-700 साल पहले लिखा गया हरिवंश पुराण, जो इतना इंपोर्टेंस भी नहीं रखता, उसमें राधा का कैरेक्टर का पहली बार लोगों के सामने आता है। और आज देखिए गली गली में रुक्मिणी कहां चली गई, कृष्ण के जगह राधा बैठ गए। तो ये हमारी समस्या है। तो इस तरह 18 महापुराण, 18 उपपुराण जो बताया गया, पर पुराण इतने नहीं, 100 से भी ज्यादा पुराण हैं। और इन पुराणों की और एक चीज है, इन पुराणों का संप्रदाय से भी रिलेशन है। संप्रदाय जो आगे जाकर के मिडिवल एज में हिंदुओं में जो अलग अलग सेक्ट के रूप में बांटे गए आचार्यों के द्वारा, अलग अलग आचार्यों ने बेसिकली 5 संप्रदाय पहले बने, छठा फिर बाद में आया, जिसको कहते हैं वैष्णव जो विष्णु को भगवान मानते हैं, शैव जो शिव को भगवान मानते हैं, गणपत्य जो गणेश को भगवान मतलब परमात्मा मानते हैं, कौमार जो कार्तिकेय को परमात्मा मानते हैं, शाक्त जो देवी को दुर्गा आदि को परमात्मा मानते हैं, सौर जो सूर्य को परमात्मा मानते हैं। तो इस तरह के 6 संप्रदाय आए, बाद में फिर दूसरे भी और भी संप्रदाय बनते गए। तो इन संप्रदायों ने उन्हें भी अपने अपने हिसाब से पुराण, संप्रदाय के आचार्यों ने पुराण बनाया। उनमें बहुत सारे पुराण हैं जो विष्णु को ग्लोरीफाई करते हैं, परमात्मा, बाकी देवताओं को सबोर्डिनेट मानते हैं। कुछ पुराण हैं जो शैव संप्रदाय से रिलेटेड है, कुछ सौर सूर्य संप्रदाय से, कुछ गणेश को परमात्मा मानते हैं। तो ये सांप्रदायिक संबंध इनका पुराणों का रहता है। इसी तरह ब्रह्मा से रिलेटेड भी जो 3 आगे जाकर जो पौराणिक 3 मेन देवताएं को हमने उभारा माइथोलॉजिकली, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु महेश्वर का तो बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी, ब्रह्मा का इतना नहीं हुआ। पर उस शुरू शुरू में ब्रह्मा की भी पॉपुलैरिटी बहुत थी और ब्रह्मा से रिलेटेड भी बहुत सारे पुराण ग्रंथ होते थे। वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके अलावा ये जो 18 महापुराण उपपुराण बताया, इसके अलावा हिंदुओं में और भी बहुत सारे लिटरेचर हैं जो आपको जानना चाहिए। वो है कि एक होता है स्थल पुराण, मोस्टली साउथ इंडिया में ये पुराण मिलता है। स्थल पुराण मतलब ये संस्कृत में कम मिलते हैं, ये जो लोक भाषा है तेलुगु तमिल कन्नड़ वगैरह में, उसमें बेसिकली किसी पर्टिकुलर मंदिर की ओरिजिन ट्रेडिशन के बारे में बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज लिखा हुआ होता है, उसको कहते हैं स्थल पुराण। एक होता है कुल पुराण, ये भी मोस्टली साउथ इंडिया के लैंग्वेज में ये पुराण मिलता है। संस्कृत में भी कुछ होते हैं, वो एक एक पर्टिकुलर खानदान फैमिली का क्या ट्रेडिशन है, उसकी ओरिजिन क्या है, एक कास्ट का ओरिजिन क्या है, क्लास का ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन को उसमें बहुत सारे माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल स्टोरीज उसमें मिलते हैं, मोस्टली रीजनल लैंग्वेज या संस्कृत में ये मिलते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताना है, पुराण जैसे शुरू में मैंने बताया, पुराण की ऑथोरिटी बिल्कुल नहीं है शास्त्र परंपरा में, क्योंकि पुराण कहानियां है, उसमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी है और उसमें हिस्टोरिकल स्टोरीज भी है। डेफिनेटली उसमें और भी कुछ बीच बीच में बातचीत के समय कुछ फिलोसफी बाकी चीजें भी हैं, पर उसमें कोई अच्छी बात है इसका मतलब नहीं कि वो अथॉरिटी है। अथॉरिटी तो शास्त्रों का होता है, पुराण सिर्फ एक एक कथा कहानियों का ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं का पुराण है, इसी तरह जैनों का, बौद्धों का भी बहुत सारा पुराण है। पुराण जो लिखे भी गए थे तब भी ज्ञानियों के लिए नहीं थे, पुराण तब भी जो अज्ञानी अनपढ़ इग्नोरेंट गांव जो ऐसे लोग हैं उन्हीं के लिए पुराण लिखे गए थे और उन्हीं में ही वो पॉपुलर रहा। वो अलग आयरनी है कि क्योंकि अब हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम 500 हजार साल से यही इसी पौराणिक चीजों को सुन सुन के बड़े हुए, इन्हीं को ही धर्म मानते हैं, उन्हीं को ही कर्म मानते हैं, उन्हीं को ही दर्शन मानते हैं, तो आज हम उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। पर पुराण कभी भी अथॉरिटी नहीं माने गए और ये कभी ज्ञानियों का शास्त्र भी नहीं रहा। ठीक है, एंजॉय करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, कुछ हिस्टोरिकल कल्चरल चीजों को समझने के लिए पुराण डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। पर इसका अर्थ ये नहीं कि पुराण बहुत यूजलेस है, उनका बहुत सारे दृष्टि से उनका इम्पोर्टेंट है। अगर आप पिछले 1000-1200 साल का इंडियन सोसाइटी देखें, वो पूरा पुराणमय है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारे जो डांस हैं, ड्रामा है, कल्चर है, आर्ट है, क्राफ्ट है, वो सब पुराण का इन्फ्लुएंस उनको बहुत आपको देखने को मिलता है। और नंबर टू, जो इंडियन थिंकिंग है, जो भारतीय लोगों का जो सोच है रिलीजन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, वो उस पौराणिक पुराण उसको काफी ज्यादा उसमें इम्पैक्ट डालता है। और एक लिटरेचर कह के बात खत्म करेंगे, आज आज इसका कंक्लूडिंग सीरीज है शास्त्र परंपरा का, वो है आगम साहित्य। बहुत कम लोग जानते हैं आगम लिटरेचर। आगे जाकर जब हिंदू धर्म में अलग अलग सेक्ट पैदा होने लगे, तो हर सेक्ट ने और उसके साथ साथ पैरेलल एक तंत्र भी चला, जो वाम मार्ग, जो बहुत बुरे बुरे गंदे गंदी चीजों को धर्म के साथ जोड़ा, वो तंत्र मार्ग जब मेन स्ट्रीम वैदिक धर्म के साथ मिलने लगा, लोगों का वैदिक शास्त्रों का ज्ञान कम होने लगा, सुपरस्टिशन बनने लगा, पुराण की स्टोरीज को सच समझने लगे, और साथ में तंत्र के द्वारा जो गंदे काम, ये मांस खाना, शराब पीना, ये सब चीजें, जब सेक्स करना, ये सब चीजें तंत्रों के द्वारा जो पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, तो तंत्र और मेन स्ट्रीम हिंदू धर्म का कंबाइंड होने पर जो एक नए तरह के लिटरेचर बने, उसको हम कहते हैं आगम शास्त्र। आज ज्यादातर मंदिरों में या घरों में जो पूजा पाठ होता है, वो प्रॉपर वैदिक विधि से नहीं होता है, वो आगम शास्त्र की विधि से होता है, जिसमें कुछ वैदिक रिचुअल तो होते हैं, पर मोस्ट ऑफ तंत्र का उसमें इन्फ्लुएंस होता है। फिर अपना सांप्रदायिक जो सेक्टेरियन जो थियोलॉजी है, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, तो उसके बेस पर एक थियोलॉजी लिटरेचर बना। ये आगम शास्त्र को कम मत आंकिए, ये हजारों में इनका नंबर है, और पूरे कश्मीर से लेकर केरला तक मोस्ट ऑफ संप्रदायों में उनमें सैकड़ों सैकड़ों आगम शास्त्र है, जो मॉडर्न हिंदुओं को आज भी उनके जो डे टू डे रिलीजियस लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये है आगम शास्त्र। तो इस तरह हमने वेद से लेकर कंक्लूड कर दें, 1 मिनट में, वेद, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, फिर आपका वेदांग, फिर षड़ दर्शन, फिर 18 स्मृति शास्त्र, फिर महाभारत, रामायण, गीता, पुराण, पुराणों में भी महापुराण, उपपुराण, और आगम साहित्य तक हिंदू धर्म के बारे में जो जो भी हिंदू धर्म के को इन्फ्लुएंस करते हैं लिटरेचर, रॉन्गली राइटली, उन सब के बारे में पिछले कुछ दिनों से 5 सीरीज से आपको कुछ समझाने की कोशिश की। हो सकता है इससे आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिला होगा कि हिंदू धर्म के क्या लिटरेचर है। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।